प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग चार, लेक्चर नंबर 258। ओम नमः सिद्धे
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिणं नमो अच्छायाणं नमो नोए सौवसाहूणं सुरासुरनरपतिवंजने प्रविनष्ट गाति कर्मणे प्रणमन करू धर्मकर्ता तीर्थशीमहावीरने वैशेषतीर्थं करणे सिद्धशुद्धासी त्वने मुनि ज्ञान गृहचारित्र तपवी याचरण संयुक्तने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदु वरी हूँ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौ सीदने नमस्करण करिये रीते गणधर अने अध्यापकोने सर्वसाहु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करूं साम्यनी येनाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जैसेनाचार्य ने तात्पर्य उक्ति टीका लिखी है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से ये चौथी पुस्तक है और उसके पृष्ठ संख्या 11 पर हम आगे 11। हाँ, देखते अभी यहाँ पर 11 नंबर का पेज है और नीचे के पैराग्राफ यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं। ये 93 नंबर की गाथा है 93। यहाँ तो इस विश्व में क्या है तो पदार्थ है और पदार्थ कैसे तो द्रव्यमय है। तो द्रव्य का वर्णन कैसे किया उन्होंने तो कहते विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदाय। आपने सुना है? अच्छा, तो विस्तार सामान्य के लिए दूसरा शब्द मालूम है तिर्यक का, तिर्यक और आयत के लिए ऊर्ध्व यानी लंबाई। लंबाई कैसी? काल की अपेक्षा लंबाई, यानी उसकी विड्थ ऐसा नहीं लेना, काल की अपेक्षा लंबाई, क्योंकि द्रव्य कब से कब तक है, अनादि अनंत है, तो उसको हम कहेंगे काल की अपेक्षा द्रव्य की लंबाई। उसमें भेद मत करो तो हम उसको द्रव्य कहेंगे और उसमें भेद करेंगे तो उसको हम पर्याय कहेंगे। ऐसे विस्तार में भेद मत करो तो अनंत गुणों का एक रूप वो द्रव्य है और उसमें हम एक एक गुण को अलग अलग बताएंगे तो उसको कहेंगे वो उसके विशेष हुए, भेद हुए, उसको गुण कहेंगे। यही बात यहाँ चल रही है। नीचे का पैराग्राफ, वीतराग जिनेश्वर देवनो मार्ग एवो अलौकिक चे। वो तो अलौकिक है, उन्हें अपनाया, केवल ज्ञान प्रकट किया और बताया उन्होंने, तो ये मार्ग तो चल रहा है कायम। अने एना फल पण आहा, एनु फल अनंत आनंद। केवल ज्ञान नी प्राप्ति जेना फल मां थाय जिन्हें अंदर, क्योंकि केवल ज्ञान होते अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाता है। अनंत सुख कहो, अनंत आनंद कहो, एक ही बात है। जेने अंदर आवा द्रव्य गुण पर्याय निर्विकल्प पने बैठा बैठा है ने, उसने उसको सही रूप से जान लिया। आगम से उसके लिए, आगम के लिए कंडीशन बताई, जिनेन्द्र भगवान ने बताया हुआ आगम होना चाहिए। तो आगम से इनका स्वरूप पहले जानना चाहिए और वो ऐसा ही है उसे हम निश्चित करना है। ये सब अपने बुद्धि में ही चलेगा, ज्ञान में ही चलेगा। तो कहते कि जेने अंदर आवा द्रव्य गुण पर्याय निर्विकल्प पने बैठा, ए विस्तार सामान्य ने आयत समुदाय नु द्रव्य तो तेनु ते छे, एम निर्णय करनारी पर्याय छे। क्या कहते हैं, जिसको द्रव्य को हमने दो पद्धति से बताया, दो अलग अलग द्रव्य नहीं है,
एक ही द्रव्य है,
उसको हमने विस्तार सामान्य समूह कहा, उसी द्रव्य को आयत सामान्य समूह कहा। यहाँ क्या कहते हैं, ये दो प्रकार से बताया, परंतु तेनु तेज द्रव्य छे, उसको एक तो गुणों के समूह रूप से बताया और एक तो पर्याय के समूह से रूप, पर द्रव्य तो वही का वही है, कथन दो प्रकार से, एम निर्णय करनारी पर्याय छे। निर्णय तो पर्याय में हो रहा है, किसका निर्णय कर रहे, द्रव्य का, पर निर्णय हुआ, निर्णय किया, जो नहीं नहीं था वो किया है, वो पर्याय है, क्योंकि कार्य जो है वो पर्याय में ही होता है। वर्तमान प्रकट पर्याय, भूत भविष्य नी पर्याय तो अंदर मा छे, अंदर मा छे जब कहते हैं तो पर्याय रूप से नहीं है, वो पर्याय की योग्यता रूप जो धर्म है वो द्रव्य में पड़ा है, अपने अपने समय में स्व समय की योग्यता है ना, वो योग्यता वाला धर्म, क्योंकि द्रव्य स्वयं उस समय उस पर्याय रूप से परिणमित होगा, इसलिए वो तो योग्यता रूप से है। और प्रकट कौन सी, वर्तमान है, एक पर्याय प्रकट है, अनादि अनंत पर्याय प्रकट है, ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि एट ए टाइम, तो एक ही समय की पर्याय होगी और पर्याय का काल ही एक समय है, अनादि अनंत विद्यमान है ऐसा नहीं, द्रव्य में विद्यमान नहीं है, और कहीं विद्यमान है वीरेश भाई? मैंने क्या पूछा, द्रव्य में तो वर्तमान एक पर्याय ही विद्यमान है, पर द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय और कहीं विद्यमान है? बोलो, केवल ज्ञान की पर्याय है, केवल ज्ञान में सभी विद्यमान है। हाँ, और उन्होंने ऐसा भी उसमें आया था, केवल ज्ञान का स्वरूप हमें प्रवचन सार में देखा था कि वो ऐसा नहीं जान रहे कि उनमें प्रमेय हो रही है, पर उनके योग्यता रूप धर्म के कारण वो नहीं जान रहे, वो तो प्रत्यक्ष है उनके लिए, निमित्त उनके लिए तो प्रत्यक्ष है, पर्याय साक्षात है ऐसा वो जान रहे, वो पर्याय वाला धर्म है इसलिए नहीं, ऐसा नहीं जान रहे। द्रव्य में तो वर्तमान एक पर्याय है, विद्यमान है, और बाकी भूत भविष्य के पर्याय योग्यता रूप से है। केवल ज्ञान की पर्याय में वो सारे ही द्रव्यों की सभी पर्याय कैसे, वो व्यक्त विद्यमान है, उनके ज्ञान के पर्याय में वो विद्यमान है, उस पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी, वहां पर चर्चा की थी, नहीं गुरुदेव ने उसको अपेक्षा से खोलकर बताई थी। ए विस्तार सामान्य ने आयत समुदाय, ये हो गया वर्तमान प्रकट पर्याय, भूत भविष्य नी पर्याय तो अंदर मा छे, अने आ प्रकट पर्याय छे ते निर्णय करे छे, क्योंकि निर्णय वर्तमान पर्याय में हो रहा है, वर्तमान में कर रहा है। कहे छे के बधी प्रकट अने अप्रकट पर्याय नो पिंड ते द्रव्य छे। द्रव्य किसको कहेंगे, अनादि अनंत पर्यायों का पिंड, पण अनादि अनंत पर्याय एट ए टाइम विद्यमान नहीं, वो एक के बाद एक होती है, वर्तमान एक ही प्रकट है और बाकी सब हो चुकी है और होने वाली है, पर वो निश्चित है, वो पूरे का पिंड, उसको हम द्रव्य कहेंगे। एम पर्याय निर्णय करे छे, प्रगट पर्याय एम निर्णय करे छे, छता वड़ी 49 गाथा में कहूं के पर्याय ने द्रव्य स्पर्शतु नथी अड़तु नथी, अने पर्याय द्रव्य ने स्पर्शती नथी अड़ती नथी। देखो ये कौन सी अपेक्षा से कहाँ क्या कथन आता है, उसका उसकी अपेक्षा नहीं समझेंगे तो ऐसा लगता है कभी ऐसा कहते कभी वैसा कहते। अर्थी नती नहीं छूती नहीं, स्पर्श नहीं कर, એ તો વર્તમાનની અપેક્ષાએ કહ્યું. બાકી ત્રિકાળ પર્યાયનો સમુદાય તે તો દ્રવ્ય છે. ત્રિકાળ ને વિશેષ ને પર્યાય ને એવા ભેદ લક્ષ્યમાંથી કાઢી નાખો તો ત્રિકાળની લંબાઈરૂપ પર્યાય તે દ્રવ્ય છે. એને વો પૂરા પ્રવાહક્રમ આ ગયા, હમને ઉસકો ખ્યાલ બે લે સકતે, ઉસકો હમ દ્રવ્ય કહેંગે. લક્ષ્યથી ગૌણ કરો, ભેદો કો ગૌણ કરો. દેખો ભેદો કા લક્ષ્ય કરો તો ઉસકો પર્યાય કહેંગે. અબ ભેદો કો ગૌણ કરો તો ક્યા દિખેગા? દ્રવ્ય હી દિખેગા. સમજ મે આઈ? જૈસે સોના હૈ, હમારે 10 પીઢ઼ી સે ચલા આ રહા હૈ. કિસીને ઉસકી બંગડી બનાઈ થી, ઉસી કો કિસીને હાર બનાયે, કિસીને મુકુટ બનાયે, પરંતુ વો ભેદો કો ગૌણ કર દો તો ક્યા દિખેગા? સોના. સોના કબ સે? યે હમારે 10વી પીઢ઼ી સે ચલા આ રહા હૈ. યે કહેતે હૈ જૈસે હમ કિસી ભી, અભી હમ આપને તો લિખા હોગા મહા અપના ગાંધી જી કા, મહાત્મા ગાંધી કા ચરિત્ર લિખો, તો કહાં સે શરૂ કરેંગે? જન્મ કહાં ઓર અંત કહાં? વો હે રામ, વો જો ગોલી મારી વહાં તક કહેંગે. તો દ્રવ્ય કો કહેંગે તો કહાં સે કહાં તક કહેના પડેગા? જન્મ તો હૈ નહીં, પરંતુ અનાદિ સે અનંત કાલ તક ઉસકો હમ દ્રવ્ય કહેંગે, તો વો દ્રવ્ય સિદ્ધ હો જાયેગા. ખાલી અકેલા દ્રવ્ય, હા યે દ્રવ્ય, એસા કહેને સે નહીં ચલે. અનંત ગુણો કા પિંડ હૈ હી હૈ, વો અનાદિ અનંત પૂરે કો જો દ્રવ્ય 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 રૂપ સે કાયમ હૈ ના. પર્યાય કી તરફ સે દેખો તો હમકો ઉસમે ભેદ દિખેંગે. વો ભેદો કો ગૌણ કરો તો ક્યા દિખેગા? દ્રવ્ય હી દિખેગા. હમ કહેતે જીવ અનાદિ સે અનંત કાલ તક. હમ કહેતે અનાદિ સે તો પહેલો તો નિત્ય નિગોદ મેં થા, બહાર મેં કભી આયા, અન્ય કેન્દ્રીય મેં જન્મા, ફિર કભી ત્રસ હુઆ, ત્રસ મેં ભી કભી મનુષ્ય તીર્યંચ દેવનારકી હોતા ગયા, ફિર દ્વારા બહોત બાર અનંતો બાર એકેન્દ્રિય મેં ગયા. પરંતુ હમ જીવ કી દૃષ્ટિ સે દેખેંગે તો જીવ વહી કા વહી, કબ તક? અનંત કાલ તક. તો ઉસમે સે કૌન સે ગુણ કમ હો જાયેગે? સારે હોય ને, એને જીવ ભી હૈ, એને દ્રવ્ય ભી કાયમ હૈ, ઉસકે ગુણ ભી કાયમ હૈ. ઓર કોઈ ભી પર્યાય ક્યો ના હો, દ્રવ્ય મેં ગુણ મેં અને સ્વભાવ મેં કોઈ ભી અંતર નહીં પડેગા. વૈસા કા વૈસા એક રૂપ સ્વભાવ કાયમ રહેગા. હમે ઉસી કા તો યે સભી દ્રવ્યો મેં યે ઘટિત હોતા હૈ, તો મેરે મેં ભી યહી બાત ઘટિત હોગી. હમને અપને કો કિતના સમજા હૈ, પર્યાય જીતના અપને કો માના હૈ, તો ક્યા હમને દ્રવ્યો કો માના? યાદ તો કરે છ દ્રવ્યો હૈ, એસા હૈ વૈસા હૈ, પરંતુ અપનો પર્યાય જીતના તો દ્રવ્ય માન લિયા. ઉસકે પીછે પૂરા ગુણો કા સમૂહ હૈ, ઓર હર સમય વિદ્યમાન હૈ, તો ઉસકો તો હમને કભી કન્સિડર હી નહીં કિયા હૈ. યહી તો ભૂલ હોગી ના અપને, ના અપને કો સમજા, ના અન્ય દ્રવ્ય કો સમજા. યે કહે રહે યહાં દેખો પેજ નંબર 12 પર, યે જો નયા પેરેગ્રાફ હૈ ના, આયત સામાન્ય સમુદાયાત્મક દ્રવ્યથી રચાયેલો હોવાથી દ્રવ્યમય છે. કોણ? પદાર્થ. આ હજી એકલા દ્રવ્યની વ્યાખ્યા કરી, હવે એના ગુણોની વ્યાખ્યા કરશે. અભી એ બીચ મેં જો પરમાગમ સાર કા કેપ્શન દે ને 727 નંબર કા, ઉસકો પઢેંગે હમ. ભાઈ આ તો દુનિયા જગત સામે બળવો છે. બળવો એને ક્યાં લેના? અચ્છા બળવો ક્રાંતિ, યાની ઉસમે બંડખોર જો બળવો, બંડ પુકારતે ના, જેને સુખ જોઈતું હોય તેને સાચો નિર્ણય કરવો પડશે. આપ કહેંગે હમ ક્યાં સુખ જ ચાહીએ, ઇસલિયે હમ તો પૈસા કમાતે હૈ. યહાં ક્યા કહે રહે, પૈસે મેં સુખ મિલેગા કે નહીં મિલેગા? વો સુખ હી નહીં હૈ, જિસકો સુખ માનકર ઉસકે પીછે પાગલ કે જૈસે પૂરી જિંદગી ઉસકે પીછે. બચપન મેં કુછ સમજતા નહીં થા, માં બાપ ને સ્કૂલ મેં ડાલા, પઢતે ગયે પઢતે ગયે પઢતે ગયે, ફિર યે ડિગ્રી વો ડિગ્રી વો ડિગ્રી સબ પઢે. અભી ઇતના પઢા તો નોકરી કરના હૈ, અપના બિઝનેસ કરના હૈ, જો કુછ કરના હૈ, પૈસા કમાતે ગયે કમાતે કમાતે ગયે. અરે વો જો કમાતે તો ભોગને કો ભી ટાઈમ નહીં. અબ ભોગને કા ભી સમય નિકાલ લેતા હૈ, ભોગ નહીં સકતા હૈ પણ ભોગને કા ભી સમય નિકાલ. ઇતને મેં ક્યા હો જાતા હૈ, બુઢા પા જાતા હૈ. એને પૂરી પૂરી લાઈફ ટાઈમ તો ઇસી મેં ચલી જતી. ઓર ઉસકા એકમાત્ર ક્યા એમ બનાયા ઉસને, પૈસા કમાના હૈ, અચ્છા સુખી હોના હૈ, ભરપૂર जो हम इन्वेस्टमेंट इधर करना उधर करना, वो दिन रात तो उसी के सोचते हैं। एक तो पैसे बढ़ेगा कैसा, वो रखना कहाँ और क्या कहाँ लगाना तो और ज़्यादा वो बढ़ेगा। हाँ, क्या वो बिल्डिंग बांधना, क्या लैंड लेना, क्या करना कि कहाँ, इसी में दिमाग चलेगा। पूरी बुद्धि जो है इसमें लगानी है, ज्ञान में। क्या कहते, देखो तो साचो निर्णय करवो पड़ से। ये तो डिफिकल्ट बात नहीं, सबसे आसान है क्योंकि अपनी बात है और सर्वज्ञ भगवान ने बताई, नहीं तो बिल्कुल त्रिवार सत्य ही है। और अनेक जीवों ने समय दर्शन प्राप्त करके, मुनि अवस्था प्राप्त के, केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए। और ये हमारा सद्भाग्य है कि वो मार्ग हमें आज तक, यहाँ पंचम काल है, इतना निकृष्ट काल है, फिर भी सही मार्ग अभी भी अवेलेबल है। अब इतना समझने की बुद्धि भी है, समझ में भी आ रहे हैं। अब इस भाव में नहीं होगा तो क्या होगा। परसों मेरे बेटी का फोन आया था, रीना का, वो भी वो प्रवचन सा सुन रहे, कहते 220 नंबर का कोई प्रवचन, इतना बढ़िया इतना बड़ा कुछ कह रहे थे, मुझे भी याद नहीं कौन सा। हाँ, तो कहते कि इतना सब समझ में आ रहा है, बिल्कुल सूक्ष्म में सूक्ष्म पॉइंट पकड़ में आ रहा है, इतनी बुद्धि है। इस भाव में नहीं हो तो अनंत काल तक और इसका मौका कब आएगा, जब सुनेंगे। उतनी बुद्धि होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए और यहाँ तक पहुंचे, और अभी नहीं होगा तो क्या होगा। तो हम ऐसे मर जाएंगे क्या, ऐसा लगता है। देख क्या कहते, आम सर्व प्रकारे पोताने देव गुरु शास्त्र स्वरूप नो निश्चय थयो होय। पहले में पहले देव गुरु शास्त्र, क्योंकि जिनका उपदेश हमको फॉलो करना है, मार्ग जिन्होंने बताया है, वो सच्चे देव ने अरिहंत सिद्ध कौन है, सच्चे गुरु यानी मुनिराज कौन है, ये हमारे विद्या गुरु जुदे है। यहाँ गुरु कहने से मुनिराज, और सत शास्त्र जो है उसका स्वरूप का निश्चय करना पड़ेगा पहले पहले। तो प्रतिपक्षी ने समझावानु बल रहे तथा पोतानी आस्तिक्य बुद्धि टकी रहे। आस्तिक्य ने देव का, गुरु का, शास्त्र का स्वरूप, पूरा तीन लोक का स्वरूप, बिल्कुल जीव का स्वरूप, छह द्रव्यों का स्वरूप, परिणमन व्यवस्था का स्वरूप, ये ऐसा ही है, ऐसी जो जैसा है वैसा ये स्वीकार किया अपने बुद्धि में, उसको कहेंगे आस्तिक्य बुद्धि। प्रसंग आये डामाडोल न थी जाए, क्या कहा, किसी ने बताया अभी तो ये सच रहा है, अन्य कहीं गया, किसी ने और अन्य पद्धति से उसको प्रस्तुत किया, तो जिसको बराबर पक्का निर्णय नहीं है तो डामाडोल हो जाए, दूसरा कहने वाला मिला तो इसका मानने लगता है। वो कहते ना वो मुरादाबादी गड़ू गड़ू होता है नीचे गोल बिन, आपने नहीं देखा, ऐसे नीचे गोल होता है, उसके कोई बेस नहीं होता। हाँ, तो उसमें यहाँ से थप्पड़ लगा तो वहाँ लुढ़क जाता है, वहाँ से थप्पड़ लगा यहाँ लुढ़क जाता है, जिसको निर्णय नहीं है, कोई कैसा कहने वाला मिला वैसा ही हो जाता है। अरे पंचम काल में कुछ नहीं हो सकता, अच्छा नहीं हो सकता, ऐसे मान लेते हैं। देखते प्रसंग आवे डामाडोल न थई जाए माटे बधा पड़खे साचो निर्णय करवो जोईए। ऐसा निर्णय हो जाए कि पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर इसका निर्णय नहीं चूकना चाहिए, उसी तो कहेंगे निशंक हो जावे। अपने जो प्रतीति की या अपने जो तत्व, पहले तो पहले समय दर्शन होने के पहले इतना निर्णय दृढ़ होना चाहिए, नहीं तो कोई अन्य कहने वाले मिल जावे, क्योंकि आजकल तो टीवी पर सब मिल जाते हैं, और लोग कहते भी हमको उसमें से अच्छा अच्छा लेंगे, क्या अच्छा लेंगे, दूसरे को कल्याण करो, सबको मदद करो, ये अच्छा लगता है सुनने वाले को, यही अच्छा लगता है, परंतु वो धर्म नहीं है, ये बात ख्याल में नहीं आती। हाँ बोलिए,
कुछ बोलू क्या,
बोलो बोलो बोलो, जरूर बोलिए।
आपको ये कहना है कि वो जो मुरादाबादी लोटा होता है वो नीचे से ऐसा गोल होता है,
गोल होता है। हाँ।
मुरादाबाद नाम का गांव है, और मद्रास में जाएंगे तो ऐसे नीचे से फ्लैट रहता है। आपके माटुंगा में स्टेनलेस स्टील की दुकानें हैं ना, उधर देखो मद्रासी ग्लास देव बोलेंगे तो ऐसा नीचे से फ्लैट होता है। तो ये मुरादाबादी लोटा की बात कह रहे हैं, तो हम तो ऐसा समझ गए थे कि बहुत बड़े सागर की लहरें आई तो हम इस तरह लुढ़क जाते हैं, वहां से अन्य सागर की लहरें आई तो हम इस तरफ लुढ़क जाते हैं। तो ये सागर कौन है आप जानते हैं?
देखो साचो निर्णय करवो पड़े, ये तो हमें ही करना है और किसी के कहने के कारण नहीं मानना है। बिल्कुल परीक्षा करके लॉजिक से बुद्धि को बिल्कुल स्वीकार होना चाहिए। पण पक्षपाती थई, पक्षपाती थी वो तो नहीं, नहीं हमारे कुल के है देव देवता इसलिए हम कर रहे हैं। भले दिगंबर जैन में जन्मा है और जन्म से इन्हीं को फॉलो कर रहा है, फिर भी निर्णय सच्चा नहीं है, फिर भी वो मिथ्या दृष्टि है। यानी वो तो गृहित कहेगा, कह दिया उसको, क्योंकि निर्णय बिना कर रहा है, पक्षपाती होकर कर रहा है। देखो क्या कहते, पक्षपाती थई देवादिनी भक्ति पूजा दी करे तो तेथी काई मिथ्या तो टरे नहीं, यानी फिर भी वो मिथ्या दृष्टि ही है, क्योंकि उसने निर्णय पूर्वक उनको नहीं स्वीकारा है। ने हमारे माँ बाप करे थे इसलिए हम करे, हमने कभी अन्य देवी देवताओं के सामने हाथ भी नहीं जोड़े। क्यों नहीं जोड़े? नहीं वो हमारे ये देव देव है, कहेंगे ये सच्चे, पर क्यों सच्चे है निर्णय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नया प्रवचन यहाँ 13 नंबर पृष्ठ पर चालू हो जाता है। पता नहीं, निर्णय नहीं तो कुछ पता नहीं है उनका। ऐसा कहते हैं तो दिगंबर में जो जन्मे हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, उनको तो जन्म से ही सच्चे देव मिले, जन्म से मिले, पर निर्णय नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई बच्चा है और वो तो वो क्या है, गोटिया कहते ना लकोटी, वो हाँ पंचे, वो खेल रहा है, उसमें एक हीरा है और उसको पता नहीं वो हीरा है, वो पत्थर मानकर खेल रहा है, उसके लिए उसकी क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है, समझ में। तो ऐसे ये भगवान मानकर वो अन्य मति अपने भगवान को पूज रहा है, ये अपने भगवान को पूज रहा है। अन्य मति वो अपने अपने जो देव देवता है, वो तो हिंदू तो हिंदू को, मुसलमान वो अपने देव को मान रहा है और ये अपने देव को मान रहा है, तो वो वैसा ही है उसके लिए, उसने वो सही निर्णय करके नहीं माना है उसको।
हम कैसा कर रहे हैं वो आपको मैं समझाता हूँ। हमारे गांव में एक गणपति का मंदिर था तो उसका एक भटजी था रोज पूजा करने वाला, तो भटजी लोगों को तो सब मिलता है फोकट में, तो ऐसा जाड़ा हो गया था तो उसकी माँ बोलती थी अपने बच्चे को कि जा पापा कैसा पूजा करते देख, न बने ऐसा प्रसंग आवे और तुझे पूजा करना पड़े बड़ा होकर, तो तुझे ख्याल तो आना चाहिए, तुझे सही बात है। तो जाके बैठता था, तो जो मोटा क्या बोलते हैं जाड़ा था ना उसका पिता, पर नीचे बैठते समय पीछे के धोती का
क्या बोलते हैं
काष्टा बोलते मराठी में, वो निकाल के रखता था, नहीं तो क्या हो जाए धोती फट जावे ना। तो इतने में क्या हो गया, वो मोटा मोटा था वो भी लुढ़क गया, मतलब मर गया। तो उसके वो बच्चे के माँ ने बोला अभी कल से तुझे पूजा करनी पड़ेगी। वो बच्चा तो 10-11 अच्छा 12 साल का था, चलो इन्हें 1 साल बड़ा है। तो गया, करूंगा उसमें क्या है, वो गया सब तैयारी की नीचे बैठने के टाइम में। वैसे हम देखा देखी दिगंबर में जन्मे है ना, वो जैसा करता है वैसा मैं करूं, निर्णय पूर्वक नहीं। वो क्यों कर रहे हैं क्या पता, वो कर रहा था मैं भी करूंगा,
ऐसा ही है। अब दिगंबर में भी कोई संस्कृत पढ़ा, कोई शास्त्र का अभ्यास कर रहा है, किसी ने पीएचडी भी की, कुछ नहीं हाथ में आया, क्योंकि शब्दों का अर्थ है मगर भावार्थ नया अर्थ कुछ मालूम नहीं है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ऐसी बात चल रही है। और फिर बाहर समाज में तो उसकी वाह चलती है। ये चल रहा है सब,
टीसी जो होता है इतना बड़ा लिखा रहता है उसमें क्या लिखा है कौन देखता है,
और उसको भी पता नहीं है क्या किसका क्या अर्थ है, शब्दों का अर्थ बस ले लिया है। और हमने ऐसा भी देखा, गाइड सारे हिंदू है, वो कहेंगे वैसा इनको लिखना पड़ता है, क्या है जैनिज्म हिंदू से निकला, ऐसा लिख देते हैं और उनको डॉक्टरेट मिल जाती है। ऐसा ही है सर, यानी द्रव्य गुण पर्याय का कोई बेस नहीं है, कुछ नहीं है, बस शब्द को शब्द लिख लिया है हमने, बस हो गया।
आज एक बहन राजकोट से आए थे,
हाँ
उनको ये फर्स्ट टाइम सुना उन्होंने कि 13वां गुणस्थान में जीव निरंतर रहता है। नहीं समझा?
वो निरंतर मार्गना की बात पूछ रहे
थे। 14 गुणस्थान है, उसमें से पहला, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 13वां, ये गुणस्थान में
जीव
कोई भी काल में जीव रहेंगे ही रहेंगे। तो ये कब से चालू हो गया? अनादि से। तो अनादि से सर्वज्ञ भी है, ये बात प्रूव होती है। अब उसने बोला कि वो हिंदुइज्म से जैनिज्म निकला है, क्या करे वो, अभी मेरे को सही नहीं देगा तो वो जो बोला है तो लिखना ही पड़ता है। ऐसी बातें चल रही है।
हाँ देखो क्या कह रहे हैं पर, प्रवचन सार गेय तत्व प्रज्ञापन्नी पहली गाथा, इस अधिकार की पहली गाथा है। त्राणु गाथा, त्राणु भगवान ना ज्ञान मा जे छ द्रव्य जनाना छे, छ ही क्यों जनाए, छ ही है जो है वो सारे जाने गए, कोई भी द्रव्य अन्योन नहीं रह सकता, क्योंकि जानने वाले में ज्ञान की कैपेसिटी तो है ही है, द्रव्यों में भी प्रमेय तो गुण है, तो कोई अननोन द्रव्य इस विश्व में रह ही नहीं सकता। तो कहते भगवान ना ज्ञान में जे छ द्रव्य जनाना छे, एमा द्रव्य कोने कहिए, गुण कोने कहिए, अने पर्याय कोने कहिए, ए ज्ञान नी विशेषता जानवा माटे स्वना लक्ष्य तेनु ज्ञान करवामां आवे छे। ये तो बस पदार्थों के जानने के लिए नहीं करना, स्व का लक्ष्य सन्मुखता ये होनी ही चाहिए, स्व सन्मुखता से ये सबका निर्णय होना है। अहिया स्वाध्याय मंदिर में द्रव्य दृष्टि ते समकित दृष्टि एम लख्यो तू ने सोनगढ़ में, द्रव्य दृष्टि ते सम्य दृष्टि। एक बार थान ना एक भाई आया, एने एम थयू आ द्रव्य दृष्टि ते सम्य दृष्टि एटले हजी जैन में पण द्रव्य कोने केवु, गुण कोने केवा अने पर्याय कोने केवा एनी पण खबर न मळे। ई कहे आ द्रव्य दृष्टि ते समय दृष्टि एटले अहीं पैसा वाला करोड़पतिओ बहु आवे छे, ए द्रव्य दृष्टि ते समय दृष्टि, समझ में ना, उनकी द्रव्य ने धन पर दृष्टि है, तो ये सब बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं वो सब समय दृष्टि। अमे कीधु भाई ए द्रव्य नु पैसा नु अहीं शुं काम छे, अने इस विश्व में बेसिकली द्रव्य पदार्थ क्या है, वो कितने हैं, ये मालूम ही नहीं ना क्या होता है। द्रव्य तो आ आत्मा, एने अहीं द्रव्य कहूं, द्रव्य कोने कहिए, आत्मा से शुरुआत की ना, कि मैं अपने से पहले शुरुआत करूं, आ आत्मा के विस्तार सामान्य समुदाय नो पिंड तेने द्रव्य कहिए। वे कौन से गुण है क्या नहीं, विस्तार सामान्य का पिंड, पिंड ने अभेद एक रूप लिया, वो द्रव्य। आ भाषा एटले जे आ द्रव्य एटले वस्तु आत्मा छे, एमा ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों नो आम विस्तार छे, विस्तार सामान्य समुदाय ने द्रव्य कहिए। आत्मा में आम तीर्छा अनंत गुणों जे छे, तीर्छा ने एट ए टाइम विद्यमान है इसलिए तीर्छा, तीर्छा ने मराठी में वो वाकड़ कहते हैं, ऐसा वाकड़ा नहीं है, जे अनंत छे पण आम तीर्छा छे, तीर्छा ने एट ए टाइम विद्यमान है इसलिए तीर्छा का। हाँ सहवर पर्याय एम नथी, पर्याय छे ही एक पछी एक, एक पछी एक इसलिए कहेंगे उसको, ऐसा कहेंगे लंबाई वाला, नीचे से वर्तमान नीचे बताएंगे, भविष्य काल के आने वाली बताएंगे। पर्याय छे ही एक पछी एक, एक पछी एक एम काल क्रमे थाय छे, उसमें काल का क्रम पर्याय क्रमे थाय छे, अने गुण अक्रमे छे। दोनों के लिए छे नहीं लिखा, क्या लिखा सुमेचंद जी? पर्याय क्रमे छे नहीं लिखा, पर्याय क्रमे थाय छे अने गुण अक्रमे छे। गुण थाय छे वाली बात नहीं है, गुण तो है अनादि से, और पर्याय तो नई नई होती रहती है, और एट ए टाइम एक समय के लिए एक पर्याय है, इसलिए क्रमे थाय छे अने गुण अक्रमे छे। समझ में डिफरेंस क्या है, मिला के नहीं मिला? नीचे से तीसरी लाइन,
एक है क्रमी है दूसरा बीइंग है,
थाई छे, क्योंकि पर्याय तो होती रहती है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और गुण कैसे है ही वो अक्रमे छे, गुण थाई छे ऐसा नहीं कहा, गुण अनादि अनंत है ना, हाँ बस सभी है, हाँ पर्याय होती, एटले द्रव्य कोने कहिए, आत्मद्रव्य पण कोने कहिए, के विस्तार सामान्य स्वरूप, उसमें क्या लिया, जे ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों छे, उसमें विशेष गुण सामान्य गुण सब कुछ आ गए, ते आम विस्तार आम तिरछा सामान्य छे, दूसरी भाषा में अनंत गुण नु सामान्य एक रूप छे, तेने द्रव्य कहिए, सबका मिलकर एक रूप हुआ वो द्रव्य। अभी 14 नंबर के पृष्ठ पर आना, बीजी अपेक्षा है द्रव्य कोने कही है, ये दूसरी अपेक्षा है, द्रव्य तो वही का वही है, पहले विस्तार की अपेक्षा बताए, अभी उसी को लंबाई की अपेक्षा बताएंगे। बीजी अपेक्षा है द्रव्य कोने कही है कि जे आ द्रव्य छे एनी त्रणे काळनी आयत पर्यायो छे, गुण छे आम सहभावी एक साथे अक्रमे छे, अने पर्याय क्रमभावी छे एक के बाद एक होने वाली, अनंत गुणनी ए क्रमभावी पर्यायो एक समय अनंती छे, एक गुण की एक पर्याय, ऐसे अनंत गुण की अनंत पर्याय, एवा त्रण काळनी पर्याय एक समय में अनंत गुणों की एक एक पर्याय, वर्तमान की ऐसे ही भूत की और भविष्य की सब मिलकर, तो त्रणे काळनी पर्याय नो समुदाय द्रव्य, एट ए टाइम विद्यमान नहीं, वो तो वर्तमान की एक प्रकट है, बाकी हो चुकी है होने वाली है, परंतु वो निश्चित है, तो तीनों काल के पर्यायों को हम कंसीडर करेंगे तो उसको हम द्रव्य कहेंगे, उसमें भेद किए बिना वो द्रव्य की लंबाई कहेंगे। तो त्रणे काळनी पर्याय नो समुदाय ते द्रव्य छे, ये बन्ने एक ज वात छे, अनंत गुणनो तिरछो विस्तार सामान्य समुदाय ते द्रव्य, के त्रिकाळी अनादि अनंत पर्यायो छे तेनो समुदाय ते द्रव्य, ए बधी एक ज वस्तु छे। समझाने के दो तरीके है, अपेक्षा दो अलग अलग बताइए, पण वस्तु तो यही है, एक ही द्रव्य की ये बात बता रहे, समझाय छे काई, आवुं सांभळ्युं न होय, सामायिक करो ने प्रोषत करो ने प्रतिक्रमण करो, मरी गयो करी करी ने कितनी बार, अनंत बार, एक ही इस भव की बात नहीं है, अनंत बार मनुष्य होकर ऐसा ही किया धर्म के नाम पर, तत्वनी खबर न मळे, द्रव्य कोने केवा, गुण कोने केवा, पर्याय कोने केवा, हाँ हाँ आ द्रव्य नी व्याख्या आपने आवी गई, आजे हवे गुण नी व्याख्या छे। द्रव्य की व्याख्या दो प्रकार से की, विस्तार सामान्य समुदाय, आयत सामान्य समुदाय, विस्तार में गुणों का एक रूप, अखंड अनंत गुणों का एक रूप पिंड, और आयत में लंबाई में क्या ले, वो अनादि अनंत पर्यायों का पिंड, वो द्रव्य। अभी नया पैराग्राफ, द्रव्य इन्हें कहिए परमाणु हो के छह द्रव्य माथी कोई पन द्रव्य हो, आत्मा हो के धर्मास्थि के अधर्मास्थि के आकाश के काल होए, भगवाने जातीय छह द्रव्य जोया छे, जाति अपेक्षा छह द्रव्य है, संख्याए अनंत छे। सुमेचंद जी सभी द्रव्यों की संख्या बता सकते हैं, जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं,
जीव अनंत है,
पुद्गल अनंत अनंत, फिर
धर्म एक,
अधर्म एक,
आकाश एक,
काल असंख्या, काल असंख्यात, कितने असंख्यात, उसका कितना प्रमाण है, असंख्यात भी, असंख्यात वेरिएशन बहुत है,
हाँ,
लोक, लोक बरोबर है, लोक प्रमाण असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण नहीं कहना, लोक प्रमाण असंख्यात, एक लोक एक यूनिट है उतने असंख्यात, जैसे एक कटोरी में हमारे पास 1000 चावल है, तो ऐसे 1000 कटोरी लेगी तो क्या होगा, 1000 × 1000 होगा, ऐसे एक लोक में असंख्यात है, ऐसे असंख्यात लोग लेंगे तो असंख्यात गुना लोक हो जाएगा, असंख्यात लोग नहीं कहना है, लोग प्रमाण असंख्यात, क्योंकि असंख्यात के वेरिएशंस बहुत है, उसमें से कौन सा वाला असंख्यात, तो लोक वाला असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात, क्योंकि एक एक प्रदेश पर लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालानु है, तो ये उनकी संख्या हुई। तो संख्याएं अनंत चे, सबके मिलकर तो अनंत ही कहेंगे हम, पण ते अनंत द्रव्यनु, द्रव्य इने केम केहूं, उसको द्रव्य क्यों कहा, के एमा अनंता गुणों आम तीर्छा विस्तार सामान्य अक्रमे एक साथे रहेला छे, तेथी तेना समुदाय ने द्रव्य इतले वस्तु कहिए, अने आयत पर्याय आम त्रणे कालनी छे, प्रत्येक समय एक एक करके आयत पर्याय जो है तीनों काल के, ए त्रणे कालनी पर्याय मा एक समय मा अनंत गुणनी अनंती पर्याय छे, वहां तो गुण तो है ही नहीं, प्रत्येक की अपनी अपनी पर्याय जुदी जुदी है, एवी जे अनादि अनंत पर्याय, पर्याय कोई कहा अवस्था हालत जिसको कहेंगे दशा, एनो पिंड ते द्रव्य छे, क्योंकि द्रव्य किसी ना किसी फॉर्म में ही होगा ना हर समय, कोई भी फॉर्म क्यों ना हो, द्रव्य तो वही का वही अनादि अनंत है। कहो समझानु काई आवी बात छे, आ गेय अधिकार छे, ज्ञान अधिकार की तो बात हो गई, पर ज्ञान जिसको जान रहा है, किसको स्व पर सबको जान रहा है, तो क्या क्या जानने में आता है, तो विश्व में क्या क्या बातें हैं, तो विश्व में जितने पदार्थ है वो द्रव्यमय है, तो द्रव्य की बात हुई। अब द्रव्य में गुणों की बात करेंगे, पर्यायों की बात करेंगे, क्योंकि गुण और पर्यायों का पिंड वही तो द्रव्य है। खरेखर तो आ संकित नो अधिकार छे, क्योंकि इसका सब वस्तु का निर्णय करेंगे, और वो भी स्वसन्मुखता से, तो उस समय सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन दोनों प्रकट हो गए, उसी को सम्यक दर्शन अधिकार भी कहे, सम्यक तो अधिकार का
यहां संकित जो लिखा है,
संकित हाँ,
यहाँ जो संकित लिखा है
हाँ,
वो सम्यक दर्शन की अपेक्षा या सम्यक्त्व की अपेक्षा है,
सम्यक दर्शन अधिकार का नाम है, इसको सम्यक दर्शन अधिकार का है, जैसे नाचार्य की टीका में उसको सम्यक दर्शन अधिकार का, यहाँ गेय तत्व प्रज्ञापन का है, एक ही बात है,
क्योंकि कई जगह संकित का अर्थ सम्यक तो भी होता है,
होता है, परंतु
यहाँ पर सम्यक दर्शन की
बात, सम्यक दर्शन अधिकार का नाम सम्यक दर्शन बताया, और ये भी बात है कि उसको पदार्थों का अधिगम, अधिगम यानी ज्ञान है, तो उसको सम्यक तो क्यों कहा, जैसे नाचार्य की टीका में हमने संस्कृत में से पढ़ा था, गुरुदेव फिर इस बात को लेने वाले हैं,
सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है।
हाँ, आपका प्रश्न है सम्यक्त्व और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है, सम्यक्त्व कहेंगे तो सुशीला क्या कहेंगे, हाँ उसमें तीनों आ गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जैसे मिथ्यात्व कहेंगे, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तीनों आ जाते हैं उसके अंदर। इसे समकित कहने की पद्धति, सम्यक्त्व आने समय दर्शन हुआ, क्योंकि जिस समय सम्यक दर्शन होता है वहां पर तीनों ही है ना, समय दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एट ए टाइम होते, सभी सम्यक होते हैं, तीन के बाद क्या अनंत गुण सम्यक रूप से परिणमन चालू हो जाता है, हर एक में सम्यक रूप से अंश चालू हो गया है, भले कोई पूर्णता को पहुंचेगा, कभी टाइम से पहुंचेगा, उसमें अलग अलग क्रम पड़ सकता है, सम्यक जैसे ना अनंत गुणांश थे सम्यक, तो प्रत्येक गुण में सम्यक अंश शुरू हो गया है, अभी मिथ्यापना नहीं रहा, अब उसमें थोड़ा विभाव रहेगा, जैसे चारित्र गुण है वो सम्यक हो गया है, चारित्र सम्यक हुआ है, परंतु फिर भी वहां अनंतानुबंधी तो निकल गया, और प्रत्येकान प्रत्येकान संज्वलन है, वहां जो राग है, फिर से सुनना, सम्यक दृष्टि का जो राग है वो सम्यक चारित्र है कि मिथ्या चारित्र है, अनंतानुबंधी कहाँ है, देखो सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक चारित्र हो गया, अभी वो लड़ाई का राग भी क्यों ना हो, पैसे कमाने का कोई सम्यक दृष्टि है, तो उसको आप मिथ्या चारित्र कहेंगे कि सम्यक चारित्र कहेंगे, ये मेरा प्रश्न है, सम्यक है वो,
यानी आप ऐसा कह रहे हैं
कथनचित,
कथनचित नहीं रहा, ना 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 ना, ऐसा कथनचित होता ही नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं लगती, राग है मैंने होने तो, क्योंकि एकदम वितराग नहीं होता है, सम्यक हो गया है, पूर्ण वितरागता नहीं हुई है, हाँ विपरीतपना था, वो मिथ्यात्व के साथ जो विपरीतपना था चारित्र में वो चला गया है। अब राग है, राग है तो हम विभाव कहेंगे, उतना
विभाव कहेंगे, सम्यक चरित्र कहेंगे,
सम्यक कहेंगे। जैसे वो आता है ना नियमसार में बताया, मति श्रुति ज्ञान को तो विभाव गुण कहा, अरे वो तो बारहवें गुण स्थान तक वो मति श्रुति है तो उसको विभाव कहेंगे, केवल ज्ञान होकर स्वभाव कहेंगे उसको।
लेकिन सम्यक दृष्टि उसे हे मानता है,
बिल्कुल हे मानता है, वो जो है हो रहा है उसको ज्ञान है उसको, तो ये विभाव तो है ही है, और स्वभाव उस रूप तो है ही नहीं है। स्वभाव तो पूर्ण वितराग और सर्वज्ञ स्वभाव है, तो जो स्वभाव जैसा है उसको तो अपने में स्वीकार करेगा, बाकी तो मेरे है ही नहीं है। उसके ज्ञान का गेय है, उसका स्वामीपना नहीं है, वो मानता है कि ये मेरा अपराध है, परंतु उसको मिथ्या नहीं कहेंगे। मिथ्या कब कहेंगे, जो मिथ्या तो के साथ वाला है उसको मिथ्या नाम देंगे।
अभी आपने एक बात बताई कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसको पैसा कमाने का राग होता है, तो कैन इट बी रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू कि जिसको पैसा कमाने का राग है वो सम्यक दृष्टि है।
पैसा कमाने का राग तो सबको है, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को, पर सम्यक दृष्टि उसको करने योग्य नहीं मानता। वो राग आते हुए भी वो राग, अरे वो मैं कहाँ पड़ा हुआ, इससे तो उसको अपना ही निषेध चलता है, हम कहाँ पड़े, हम यहाँ क्यों अटके हैं, क्यों करें, यानी हो रहा है उसके, पर उसके वो करने जैसा नहीं मान रहा है, ये डिफरेंस है।
बेनश्री बेन की भाषा में क्या, हम यहाँ परदेश में क्या अभी पड़िया,
हाँ ऐसा ही लगता है उसको, उसको पता है मेरी कमजोरी है, अभी मेरे में ये राग विद्यमान है, भले वो पैसा कमाने का होगा, पुत्र के प्रति प्रेम होगा, जो कुछ अन्य जो कोई बातें होगी, उसको पता है कि ये तो छोड़ने लायक ही है, अरे पुण्य परिणाम भी छोड़ने लायक ही है, तो और पाप परिणाम है। भगवान की भक्ति भी बहुत हर्ष ये विभोर होकर कर रहा है, वो पता है कि अरे मेरे तो अपने में स्थिर होने योग्य, ये तो पुण्य के परिणाम है, ये भी छोड़ने में कहाँ अटका हूँ इसमें, उस समय भी लगेगा उसको। देखो हम कहाँ पढ़ रहे थे, पेज नंबर 14 पर, वो समकित अधिकार है ना, वो पूरा हो गया दो पैराग्राफ के बाद। अभी सम्यक दृष्टि धर्मनी पहली श्रेणी वालों, श्रेणी ने सीढ़ी, पहली सीढ़ी है ना, श्रावक पांचवा गुणस्थान, ये तो बहुत जुड़ी चीज है। जुड़ी चीज क्यों कहा, क्योंकि अधिक स्थिरता है आत्मा में, स्थिरता बहुत जम गई है उसके, तो केवल बाह्य में व्रत लिए इसलिए उसको पंचम गुण स्थान व्रती नहीं कहते, वो तो उसके है ही है, क्योंकि जितनी स्थिरता बढ़ेगी बाह्य में उस जाति के शुभ राग सहज आएंगे उसके, पर वो करता है इसलिए उसको पांचवा गुण स्थान होता, ऐसा नहीं है। हाँ वाड़ाना श्रावक है, कहीं श्रावक छे नहीं ऐसे कहेंगे, ये तो हम सारे जैन समाज है कि हम ये सब श्रावक है, वो तो कहने पुरता है। हाँ, श्रावक तो उसी को कहेंगे सम्यक दृष्टि, वो भी पांचवें गुणस्थान वाले को श्रावक कहेंगे, यहाँ लिखा ना पांचवें गुणस्थान, तो श्रेणिक राजा को श्रावक कहा है, श्रावक को उत्तम कहा है। हाँ, तो गुणस्थान पांचवा होना चाहिए कि चौथा था कि पांचवा था, नहीं इनको बताए ना
चौथा, चौथा
क्यों आपको क्या मालूम, अवृत्ति था कि व्रत कर रहा था,
ये तो हम आगम पढ़ते हैं, वो आगम के आधार से हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि वो चौथे ही गुणस्थान वाला था, पांचवा नहीं था।
मालूम है, बता दिया। देखो देखो, जिस किसी ने नरकायु बांधी हो, देवायु देव ने मनुष्यायु बांधी हो, तीर्यंच आयु बांधी हो, ये तो ये आयु मनुष्य के लिए हम रूल बता रहे, तो मिथ्या दृष्टि उसको बांधेगा, सम्यक दृष्टि हो तो देवायु ही बांधेगा। तो पहले मिथ्या तो अवस्था में इनमें से कोई आयु बांधी है, बाद में उसको सम्यक तो हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं है, और उसके पांचवा गुणस्थान भी नहीं होगा,
भी नहीं
तो मुनि होने की तो बात ही छोड़ दो, यानी अभिश्रेणिक राजा मिथ्या दृष्टि थे नरक आयु बांधी थी, वो मुनि पर उपसर्ग किया तो सातवें नरक की आयु बांधी थी, बाद में समय दृष्टि हो गए। अभी आयु बांधी वो तो चेंज नहीं होगी, पर समय तो लेने में कोई बाधा नहीं, केवल समय नहीं क्षायिक समय दृष्टि हुए, अरे तीर्थंकर प्रकृति भी बांधने लगे। फिर भी अभी उसके पांचवें गुणस्थान के योग्य स्थिरता नहीं होगी उनके, ये नियम है, ऐसे सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे जीवों के ऐसे ही परिणाम होंगे कि वो तो आगे नहीं बढ़ सकता।
अगर उसने देवायु या मनुष्यायु बांधता तो फिर
नहीं, मनुष्यायु के लिए भी नहीं,
मनुष्य के लिए नियम है,
उसने नियम है, जिस मनुष्य ने, हाँ ऐसा ले, जिस मनुष्य ने पहले मनुष्यायु बांधी हो, मनुष्य मनुष्यायु कब बांधेगा, मिथ्या दृष्टि हो तो ही। और हम सारे महाविदेह में जन्मना चाहते हैं, यानी मिथ्या दृष्टि रहना चाहते हैं, है ना।
नियम फिर से दोहराना आप,
जिस मनुष्य ने,
मैं बोलूं,
हाँ
बात ऐसी होती है, अपन मनुष्य जो जीव है वर्तमान में उसकी बात कर रहे हैं, वो चारों गति की आयु बांध सकता है, लेकिन सम्यक होने के बाद अगर कोई आयु बांधेगा तो देवायु ही नियम से बांधेगा, और जो देवायु बांधेगा वो पांचवा छठा सातवा गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं,
लेकिन जिसने देवायु बांधने के बाद कितने गुणस्थान तक जा सकता है, लक्ष्मी? अरे ग्यारहवे तक, बारहवे में जाएगा क्या? नहीं आयु बांधने वाला शपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, पर उपशम श्रेणी में ग्यारहवे तक जा सकता है। हाँ, आपका फिर दोबारा रिपीट करना, बीच में रोक दिया मैंने।
देखो, हमने इस ये बताया है कि सम्यक्त्व होने के पूर्व में कोई भी चार गति में से कोई भी गति बांध सकता है।
गति नहीं, आयु,
आयु, आयु, आई एम सॉरी चारों आयु में से कोई भी आयु बांध सकता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि सम्यक तो होने के बाद कोई अगर आयु बंध करेगा वो नियम से देवायु ही बांधेगा, वो नरकायु मनुष्यायु सम्यक तो के बाद नहीं बांधेगा। अगर सम्यक तो होने के पूर्व उसने अगर आयु बांधी है, कौन सी, मनुष्य की, तीरंज की या नरक की, तो उसके बाद आयु बांधने के बाद वह जीव सम्यक्त्व की तो प्राप्ति कर सकता है, लेकिन वह पांचवा सातवां गुणस्थान प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए आप बता रहे श्रेणिक राजा को श्रावकोत्तम कहा, ने श्रावकों में उत्तम, वैसे तो श्रावक पंचम गुणस्थानवर्ती जीवों के ही कहते हैं, लेकिन ये तो व्यवहार से कहा। जैसे आप जाते हैं बड़ी बड़ी सभाओं में तो वहाँ कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वहाँ जज जेब कतरे भी होते हैं, तो वो क्या जेंटलमैन है क्या, एक कहने का प्रघात है। और भाइयों और बहनों कहेंगे, और उसकी बीवी तो बाजू में बैठी है, ऐसा भी होता, ये तो कहने की पद्धति है। इसलिए उसको श्रावकोत्तम कहा, लेकिन वो तो श्रावक नहीं थे, यानी पंचम गुणस्थान उनको था के नहीं, ये अभी तो हम उस जमाने में होंगे लेकिन उसके साथ का अभी का याद नहीं आता है, लेकिन ये हमारे पास आगम का बहुत बड़ा प्रूफ है कि हम ये नक्की कर सकते हैं कि उन्होंने नरकायु बांधी थी। कब बांधी थी नरकायु, तो मिथ्यात्व अवस्था में ही बांधते हैं, तो उन्होंने नरकायु बांधी, इसलिए उनको चौथे के ऊपर का गुणस्थान उस भाव में प्राप्त नहीं होगा। फिर आपने बहुत सारी बातें बताई कि उन्होंने केवल सम्यक तो नहीं प्राप्त किया, क्षायिक सम्यक भी हुए, तीर्थंकर गोत्र बांधा, अवसर पर निकाल के पहले तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन वो आगामी भावों में, उस भाव में तो चौथे गुणस्थान में ही होंगे और होते ही है। ये बात हम आगम के अभ्यास के द्वारा अब भी निर्णय कर सकते हैं, यानी हमारा जिसको हम कहेंगे कि निर्णय सही है तो ही हमें आगे का रास्ता प्राप्त हो सकता है। इसलिए आगम की बहुत सारी आवश्यकता है।
देखो
और आप
क्या
भी अच्छा करते हैं। कहाँ से कहाँ से आ रहे हैं आप?
खारघर से।
खारघर
से आ रहे हैं
वो बोलते हैं, नहीं मैं निगोद से आया हूँ बोलते।
खारघर की रोज आवे
वो आज आई थी ना वो समय सार में। दो ही है अवस्था, एक निगोद और सिद्ध। बीच वाली तो उसे व्यवहार से कहने में आती कहते क्योंकि मैक्सिमम काल निगोद में था, अनंत काल तो वहीं पर बिता है, निकला है निकला है। और समय दर्शन के बाद तो सिद्ध पर्याय होने वाली है, दो चार भाव में जो कोई होगी। तो मुख्य दो ही पर्याय है, एक सिद्ध पर्याय एक निगोद पर्याय। बीच वाली सब कहने के लिए है ऐसा। देखो समय दृष्टि धर्म ने पहली श्रेणी वालों श्रावक पांचवो गुणस्थान है तो बहु जुदी चीज छे। आ वाड़ाना श्रावक के कहीं श्रावक छे नहीं, वैसे तो प्रथमान योग में सभी जो समाज है उसको श्रावक कह देते हैं, उसकी कोई बात नहीं। अंतरमा श्रावक थवा पहला समय दर्शन थाय, क्योंकि सम्यक तो पूर्वक ही वो श्रावक वाली भूमिका आ जाएगी। ए सम्यक दर्शन में आ आत्मद्रव्य केवु छे तेनु एने त्या ज्ञान थाय छे। बिना ज्ञान के तो नहीं होगा। सोना में जेम पीड़ाश ने चिकास ने वजन आम एक साथे छे ने, उसके गुण बताए फॉर एग्जाम्पल करके, एम आत्मानी अंदर मा आत्मा ने द्रव्य केम कहूँ के एमा अनंत ज्ञानादि गुणों अनंत 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 छे, पन बधा आम वर्तमान तिरछा विस्तार स्वरूप छे, यानी वो एट अ टाइम है सब काल क्रमे विस्तार, ए तो पर्याय छे। एक के बाद एक होने वाली जो है वो विस्तार, जो द्रव्य को हम जो विस्तार बताते हैं वो तो पर्याय की अपेक्षा उसको फैलाव बताते हैं। आ विस्तार तिरछो छे, कौन सा गुणों वाला? अनंत गुणनो पिंड जे समुदाय तेने द्रव्य कहिए, अथवा अथवा कहा त्रणे काळनी अनादि अनंत पर्यायनो पिंड छे तेने द्रव्य कहिए। क्योंकि पर्याय तो गुणों की अवस्था है, तो अनादि अनंत जो उसकी जो उसका पिंड है वो द्रव्य है। ये तो एक नी एक वाचे, यानी वो आयत सामान्य को या विस्तार सामान्य को, द्रव्य तो वही का वही है। गुण थी द्रव्य कीधु, पर्याय थी द्रव्य कीधु, त्या सुधी तो आवी गयु छे। यानी एक परिभाषा में गुणों के समुदाय समूह को कहा और यहाँ पर्याय के समूह को कहा। विस्तार सामान्य समुदायत्मक, एटले देखो गुरुदेव ने भी कितनी बार बताया, क्योंकि ये सब नई अपेक्षा है ना, कभी नाम सुने नहीं लोगों ने, वो तो केवल रट लिया है गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बस इतना ही। हाँ विस्तार सामान्य समुदायत्मक, एटले विस्तार सामान्य समुदाय स्वरूप अने आयत सामान्य समुदाय स्वरूप द्रव्य थी रचायेलो होवाथी, कौन रचायेला है द्रव्य से? पदार्थ। आवा गुण अने आवा पर्याय थी रचायेलो होवाथी कोई रचो हशे, क्या कहा, किसने रचना की? वो रचना हुई ने, वो है रचना की कहेंगे या हुई मेरे से हुई कहेंगे तो उसको बिगिनिंग हो जाएगी, और उससे रचित है बस इतना ही। अनादि थी भगवाने आवो जोयो छे, दरेक परमाणु अने आत्मा छे एमां सौना पोताना अनंता गुणोनो विस्तार छे अने पर्यायनो क्रम छे। एने वो सुनिश्चित है ना, गुण बदलेंगे थोड़े नहीं तो पर्याय तो बदल सकते हैं ना। जब अनादि अनंत पर्याय का पिंड कह दिया तो उसके प्रत्येक पर्याय निश्चित है, तभी तो हमने पूरी अनादि अनंत पूरी इंक्लूड कर दी, उसी में क्रमबद्ध द्रव्य की परिभाषा में ही क्रमबद्ध सिद्ध हो जाता है। सुनिश्चित नहीं होगे तो उसको वो फिक्स जो क्रम है, हरेक का अपना अपना जुदा है। देखो जीव द्रव्य अनंत है, विस्तार सामान्य समूह सबका समान है, पर अनादि अनंत पर्यायों का क्रम जो है, सिक्वेंस जो है, वो क्या सबका समान होगा? अपना अपना जुदा होगा ना। गुण तो सभी के वही है, यानी वैसे के वैसे सभी के है, सभी जीवों के गुण तो समान है, परंतु पर्यायों का जो सीक्वेंस जो हम कहेंगे, पहले कौन सी पर्याय थी, बाद में कौन सी, फिर हर समय की जो पर्याय, भले सभी जीव मोक्ष में चले गए बहुत सारे अनंत, फिर भी वो अनादि से निगोद से निकल कर सिद्ध तक की जो उनका जो पर्याय उनका क्रम है अपना अपना सुनिश्चित जुदा जुदा है, हर एक का अपना अलग है। ये किसी को समय दर्शन पहले हुआ तो मोक्ष पहले जाएगा कि नहीं बोलो? जरूरी नहीं। अभी श्रेणिक राजा की बात की, उसको समय दर्शन हुआ पर उसके पहले उसकी चेलना रानी तो समय दृष्टि थी, पहले से समय दृष्टि थी। हाँ, उस भाव में पाया, वो स्त्री थी तो उस भाव में उसने समय तो पाया। अब श्रेणिक मारा तो पहले तो गृहित मिथ्या थी, फिर वो समय दर्शन हो गया, उनको समय दर्शन हुआ, तीर्थंकर प्रकृति बांधी। कितने काल में वो सम्यक तो प्राप्त किया उस भाव में, जो हम कहेंगे पहले की बात हमको मालूम नहीं, तब से भी मोक्ष कब होगा? 84,000 वर्ष के बाद। बराबर है ना? 84,000 वर्ष की नरकायु रही, उसके बाद वो मनुष्य हो गए। जितनी आयु लेकर आएंगे, जिसने 100-125 वर्ष की जितनी, तो उतने काल में मोक्ष जाएंगे शनिक राजा। अब चेलना तो समय दृष्टि थी, समय दृष्टि ने आयु बांधी तो देव में गई। हाँ, देव में गई तो कितने सागरों की आयु होगी? सागर ने असंख्यात 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 वर्ष, अभी तो एक भव, अब मालूम नहीं कि और कितने भव उसके बाकी है। यानी कोई समय दृष्टि है इसलिए जल्दी मोक्ष चला जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने वाले भी कोई ऐसे गिरते हैं, परिणाम ऐसे हो जाते हैं, एक इंद्रिय आदि में चले जाते हैं, निगोद में अर्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ हाँ बोलो। हाँ, पर पदार्थ द्रव्यमय है उसकी बात चल रही है। यानी इस विश्व में क्या है, तो जो कोई पदार्थ है वो कैसा है, तो द्रव्यमय है। वो पहली लाइन में यही लिया था ना टीका के, पहली लाइन में ही है, इस विश्व में जो पदार्थ है वो द्रव्यमय है। और द्रव्य कैसा है? विस्तार सामान्य समुदायत्मक और आयत सामान्य समुदाय। पदार्थ कहो द्रव्य को एक ही बात है, परंतु वो द्रव्य है पहले ये नक्की कर रहे हैं। यानी कोई भी चीज हमको है तो वो तो है, तो पहले में पहले वो द्रव्य है ये नक्की हुआ। और द्रव्य किसको कहना उसकी बात चल रही है। अब गुणों की बात तो उन्होंने उठाई नहीं, अभी तो वो चलेगी आगे चलकर।
और एक प्रश्न।
हाँ, और एक प्रश्न।
On his behalf, I'm asking you.
हाँ,
यहाँ लिखा है पहली लाइन में पेज नंबर 15 के दरेक परमाणुओं ने आत्मा छे एमा सौना यानी शंबर
अपने अपने। हाँ,
सौना का अर्थ नहीं समझे?
अच्छा, सौने ने सभी के,
अपने अपने
सभी, सौ ने शंबर नहीं लेना। हाँ,
सभी।
हिंदी में सौ का अर्थ होता है 100।
सौना यानी अपने अपने,
सभी सौ ने सभी।
यहाँ देखो, देखो यहाँ क्या लिखा है, दरेक परमाणुओं ने आत्मा छे
सभी का
एमा सौना यानी अपने अपने पोताना अनंत गुणों नो विस्तार छे। सभी के नहीं होता है वो।
अच्छा, सभी के अपना।
देखो देखो, मंगलाचरण रोज सौना का अर्थ होते सभी का, पोता का नहीं। आप मंगलाचरण रोज गाते हैं, अरिहंत ने सौ सिद्ध ने, तो केवल सौ ही सिद्धों को नमस्कार करते कि सभी सिद्धों को करते हैं? क्या मैं सौ ने सभी। और आगे पोता ना लिखा उन्होंने, हाँ, सौ के अपने अपने अनंत गुण। हाँ, सौ सभी के अपने अपने, ये पैराग्राफ हो गया ना। देखो, ગુણોને વિસ્તાર છે, પર્યાયનો ક્રમ છે, એનાથી રચાયેલો એટલે હોવા વાળો છે, એને દ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે, એ દ્રવ્ય સ્વરૂપ છે। યહાં રૂપતે અભી હમ હો ગયે ને સમય। જાવાણી કે જ્ઞાન તે સૂઝે લો કાલો સોવાણી મસ્તક
નમો 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 નમો